आज हम 16वीं और 17वीं सदी के मुगल भारत के ग्रामीण समाज की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि किसान, जमींदार और उस समय का जो स्टेट था वो एक दूसरे से कैसे जुड़े थे।
बिल्कुल,
हमारा मिशन है ये समझना कि उस समय का समाज, मतलब वो काम कैसे करता था, पावर किसके हाथ में थी और आम लोगों की जिंदगी असल में थी कैसी।
और ये सवाल हमें मुगल एम्पायर की नींव यानी उसकी एग्रेरियन और रेवेन्यू सिस्टम को समझने का एक बहुत अच्छा मौका देते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, Q52, एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दैट द जमींदार्स गॉट इन द मुगल रूरल सोसाइटी।
ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मुगल ग्रामीण समाज में जमींदार एक पावरफुल रूरल इलीट थे।
पावरफुल रूरल इलीट,
हाँ, उनके पास इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह के विशेषाधिकार थे।
अच्छा, तो पहले इकोनॉमिक प्रिविलेजेस की बात करते हैं।
जरूर, सबसे पहले तो उनके पास बहुत बड़ी पर्सनल जमीनें होती थी जिन्हें कहते थे मिल्कियत। इस मिल्कियत जमीन पे वो मजदूरों से खेती करवाते थे,
मतलब सारा मुनाफा उनका अपना।
बिल्कुल। फिर उन्हें स्टेट की तरफ से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार था, जिसके लिए उन्हें एक कमीशन मिलता था।
और
वो किसानों को पैसे भी उधार देते थे और जो स्थानीय बाजार होते थे, मतलब हाट, वहां से भी वो टैक्स वसूलते थे।
अरे वाह, तो सोशल प्रिविलेजेस क्या थे? क्या समाज में भी उनका रुतबा अलग था?
हाँ बिल्कुल, ज्यादातर जमींदार ऊंची जातियों से आते थे जैसे राजपूत और ब्राह्मण, तो समाज में उन्हें एक खास दर्जा मिलता था।
ये तो है।
और उनके पास अपनी सेना भी होती थी, मतलब सशस्त्र सैनिक जिसे फौज कहा गया है।
अपनी सेना?
हाँ, और उनके पास छोटे छोटे किले भी होते थे, किलांचा।
वाह, तो जमींदार सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे, वो तो एक तरह से अपने इलाके के राजा ही थे।
एकदम सही।
एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये कैसा सवाल है?
ये 8 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जमींदारों के इकोनॉमिक और सोशल दोनों पहलुओं पर लिखना होगा, और मिल्कियत, किलाचा और राजस्व वसूली जैसे कीवर्ड्स जरूर लिखने हैं।
ठीक है, और रिमेम्बर दिस,
जमींदारों की निजी जमीन को मिल्कियत कहा जाता था।
ठीक है, अब अगर जमींदार इतने शक्तिशाली थे तो फिर गांव के स्तर पर शासन कैसे चलता था?
इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। Q52, द रूरल सोसाइटी ऑफ मुगल इंडिया वॉज कंट्रोल्ड बाई पंचायत विद द हेल्प ऑफ विलेज हेडमैन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट।
ये भी एक बहुत दिलचस्प व्यवस्था थी। गांव का शासन चलाती थी पंचायत और उसका मुखिया होता था ग्राम प्रधान।
पंचायत का मुखिया, उसे क्या कहते थे?
उसे कहते थे मुकद्दम या मंडल।
मुकद्दम या मंडल,
हाँ। उसका काम था गांव के हिसाब किताब की देखरेख करना और इसमें पटवारी उसकी मदद करता था।
तो ये पंचायत बनती कैसे थी? पंचायत,
अच्छा,
असल में गांव के बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स कह सकते हैं।
अच्छा।
और अक्सर ये एक जाति पंचायत होती थी, मतलब इसमें गांव की जो सबसे पावरफुल जाति होती थी उसी का दबदबा होता था।
तो इसके काम क्या क्या थे?
एक तो जमीन और शादी ब्याह से जुड़े जो झगड़े होते थे उन्हें सुलझाना। दूसरा, सामाजिक नियमों को लागू करना, और अगर कोई नियम तोड़ता तो उस पे जुर्माना लगाना या उसे समाज से बाहर भी निकाल देना।
समाज से बाहर निकालना, ये तो बहुत बड़ी सजा होगी उस जमाने में।
बहुत बड़ी। और तीसरा काम था एक कॉमन फंड को मैनेज करना।
कॉमन फंड?
हाँ, गांव के लिए, जिससे बाढ़ जैसी आपदा में मदद की जाती थी या फिर सरकारी अधिकारियों के आने जाने का खर्चा उठाया जाता था।
इसका मतलब मुगल स्टेट ने पंचायतों को काफी ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता दी हुई थी।
हाँ बिल्कुल, गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर राज्य पंचायत के फैसलों का सम्मान करता था।
इसका एग्जाम पॉइंट क्या है?
ये 3 और 8 नंबर दोनों में आ सकता है। इसमें मुकद्दम, जाति पंचायत और कम्युनिटी फंड्स जैसे पॉइंट्स जरूर शामिल करें।
और रिमेम्बर दिस,
गांव के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था।
ठीक है, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। सवाल है, Q53, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ द मुगल एम्पायर इन मैनेजिंग देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज।
देखिए, मुगल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति जमीन से मिलने वाले रेवेन्यू पर टिकी थी।
हाँ।
और उन्होंने इसे मैनेज करने के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया था।
कैसा सिस्टम?
वो पहले राजस्व की एक अनुमानित रकम तय करते थे।
अच्छा।
जिसे कहते थे जमा।
ओके।
और फिर जो असली रकम वसूली जाती थी उसे कहते थे हासिल।
जमा और हासिल, तो जमा एक तरह का टारगेट हुआ, है ना?
एकदम सही। और इस पूरे काम की निगरानी के लिए हर प्रांत में अमीन जैसे अधिकारी होते थे, और इन सब के ऊपर होता था दीवाने आला, मतलब मुख्य दीवान।
और क्या सिर्फ टैक्स वसूलता था या प्रोडक्शन बढ़ाने में भी कोई दिलचस्पी थी?
बहुत ज्यादा। यही तो उनकी सोच दिखती है। राज्य किसानों को जिनसे कामिल यानी बेहतरीन फसलें उगाने के लिए इनकरेज करता था।
जिनसे कामिल ये क्या था?
मतलब कैश क्रॉप्स।
अच्छा, कैश क्रॉप्स।
हाँ, क्योंकि इनसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था।
तो ये सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, बल्कि उत्पादन बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति थी।
बिल्कुल।
इससे जुड़ा एक और सवाल है, हाउ वर सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन क्लोजली इंटरट्वाइंड इन एन एवरेज पेजेंट्स होल्डिंग?
ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि किसान सिर्फ अपने गुजारे के लिए अनाज नहीं उगा रहे थे,
तो फिर
वो अपनी जमीन के एक हिस्से पर जिनसे कामिल भी उगाते थे, मतलब कैश क्रॉप्स। इससे वो बड़े बाजारों और एक मार्केट इकोनॉमी से जुड़ जाते थे।
इस सवाल के लिए एग्जाम पॉइंट क्या होगा?
ये 3 नंबर का सवाल है। इसमें जमा और हासिल, दीवाने आला और जिनसे कामिल का जिक्र जरूर करें।
और
रिमेम्बर दिस, बेहतरीन फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था। राजस्व निर्धारण जमा और वास्तविक वसूली हासिल थी।
चलिए अब जरा आम किसान की जिंदगी पर नजर डालते हैं। Q.57 डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एन एवरेज पेजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी।
17वीं शताब्दी में आम किसान को रैयत या आसामी कहा जाता था।
रैयत या आसामी?
हाँ, उनकी जिंदगी बहुत बहुत साधारण थी और अकाल के समय तो बहुत मुश्किल हो जाती थी।
उनके पास जमीन कितनी होती थी?
बहुत छोटी छोटी जमीनें। सोचिए, गुजरात में 6 एकड़ और बंगाल में 10 एकड़ जमीन वाले किसान को अमीर माना जाता था।
सिर्फ 10 एकड़ में अमीर?
हाँ, और किसानों के भी 2 प्रकार थे।
वो क्या?
एक थे खुदकाश्त। ये वो किसान थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी। इनके अधिकार परमानेंट और इनहेरिटेड थे।
अच्छा, ये गांव के इनसाइडर हुए?
बिल्कुल। और दूसरे थे पाही काश्त। ये बाहरी किसान थे जो किसी दूसरे गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे, या तो बेहतर शर्तों के लिए या फिर मजबूरी में।
और इस कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? हमारा अगला सवाल यही है। Q54 एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन एज अ रिसोर्स इन द एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द मुगल एम्पायर।
महिलाएं? महिलाएं तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थीं।
वो कैसे?
वो पुरुषों के साथ खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं, बुआई, निराई, कटाई, सब कुछ। इसके अलावा वो कारीगरी के कामों में भी बहुत महत्वपूर्ण थीं, जैसे सूत कातना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई करना।
तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था?
बहुत बड़ा। और चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं का बहुत महत्व था। उन्हें एक रिसोर्स की तरह देखा जाता था।
और उन लोगों का क्या जो बसे हुए गांव से बाहर जंगलों में रहते थे? Q55 एक्सप्लेन हाउ एसोसिएशन विद द स्टेट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स।
जंगल में रहने वालों को जंगली कहा जाता था।
जंगली? इसका मतलब असभ्य तो नहीं था?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था वो लोग जिनकी आजीविका जंगल पर निर्भर थी, जैसे शिकार करना, शहद, मोम इकट्ठा करना।
तो स्टेट के आने से उनकी जिंदगी कैसे बदली?
जैसे जैसे स्टेट फैला, उसे शहद, मोम और हाथियों की जरूरत पड़ी।
अच्छा,
इससे जंगलवासी व्यापार से जुड़ गए।
कोई एग्जाम्पल है इसका?
हाँ, पंजाब के लोहानी कबीले का जिक्र है जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे।
और राजनीतिक तौर पर?
कई आदिवासी मुखिया मुगलों के अधीन शक्तिशाली जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी बने, जैसे असम के अहोम राजा।
तो इन तीनों टॉपिक्स पर एग्जाम पॉइंट क्या होगा?
किसान, महिला और जंगलवासी, तीनों पर 3-3 नंबर के सवाल बन सकते हैं। खुदकाश्त, पाही काश्त, जंगली और अहोम राजा जैसे कीवर्ड्स याद रखें।
और रिमेम्बर दिस,
गांवों के निवासी किसान खुदकाश्त और बाहरी किसान पाही काश्त कहलाते थे।
यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हमें ये सब मतलब इतनी सटीकता से पता कैसे है? और यही हमारा आखिरी सवाल है। Q60 डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द अकबरनामा एंड द आईन ए अकबरी।
ये सारी जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स है अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था।
अबुल फजल?
हाँ, ये 3 किताबों में है। पहली 2 में अकबर के पूर्वजों और उनके शासनकाल की घटनाओं का जिक्र है।
और तीसरी किताब?
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण किताब है आईने अकबरी।
आईने अकबरी?
हाँ, इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है।
5 हिस्सों में?
हाँ, पहला है मंजिल आबादी, जो शाही घराने से जुड़ा है।
हाँ।
दूसरा है सिपा आबादी, जो सैन्य और नागरिक प्रशासन पर है।
और तीसरा?
तीसरा है मुल्क आबादी। ये सबसे जरूरी है, इसमें रेवेन्यू और वित्तीय मामलों की पूरी जानकारी है,
मतलब सारा हिसाब किताब।
हाँ, और वो भी डिटेल्ड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रांतों के बारे में विस्तृत आंकड़े हैं।
और बाकी 2?
चौथी और पांचवी किताब में भारत के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन है।
तो आईने अकबरी सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं, बल्कि उस समय के प्रशासन और समाज का एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है।
बिल्कुल, इसमें दिए गए आंकड़ों की वजह से ही इतिहासकार मुगल भारत के समाज और कृषि को फिर से समझ पाए हैं।
इसका एग्जाम पॉइंट क्या रहेगा?
ये 8 नंबर का बहुत जरूरी सवाल है। इसमें अबुल फजल अकबरनामा की 3 किताबें और आईने अकबरी के 5 हिस्सों, खासकर मुल्क आबादी का जिक्र करना जरूरी है।
और रिमेम्बर दिस,
अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। इसकी 3री किताब आईने अकबरी है।
तो आज हमने देखा कि मुगल ग्रामीण समाज कितना जटिल और कितना व्यवस्थित था।
एक तरफ जमींदार जैसी शक्तिशाली ताकतें थीं,
तो दूसरी तरफ पंचायतों के जरिए गांव का अपना शासन भी था।
हाँ, और हमने ये भी देखा कि राज्य की आर्थिक नीतियाँ कैसे आम किसान की जिंदगी से जुड़ी थीं
और कैसे समाज का हर वर्ग, चाहे वो महिला हो या जंगल में रहने वाला, इस बड़ी व्यवस्था का एक हिस्सा था। लगते हैं
एक विचार ये है कि आईने अकबरी जैसे दस्तावेज हमें स्टेट का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, एक ऐसा राज्य जो हर चीज को नापना, गिनना और कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि एक आम किसान या एक जंगलवासी के लिए इन नियमों और आंकड़ों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब था।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
कौन सी कहानियां हैं जो इन सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं हो पाई।